नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह का हथियारबंद माओवादी उग्रवादियों के साथ बातचीत से इनकार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय सहित 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए अपनी त्रिभाषा नीति वापस ली। मुख्यमंत्री ने इस नीति पर विचार विमर्श के लिए एक समिति की घोषणा की। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू। IAEA प्रमुख ने कहा, अमरीकी हवाई हमलों के बावजूद ईरान कुछ महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने अपना पहला अमरीकी ओपन खिताब जीता। तन्वी शर्मा उपविजेता रहीं। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वो बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी।
उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति गोरखपुर के लिए रवाना होंगी। गोरखपुर में वह प्रमुख 3 संस्थानों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और 2 दिनों में सड़क मार्ग से शहर में करीब 129 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। राष्ट्रपति आज गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी, जहां वह मेधावी छात्र छात्राओं को पदक प्रदान करेंगी। अगले दिन राष्ट्रपति सुबह उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। दोपहर में वह सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्य धाम परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी और गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखेंगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया।
सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज देश की जनता किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रकोमा से मुक्त घोषित किया गया है।
आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है।
आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, उन्होंने न केवल संविधान की हत्या की बल्कि न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने के प्रयास किए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के रूप में याद किए जाने वाले आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के अंतर्गत जेल में बंद लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमने वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त से बात की, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों के दौरान अपने अनुभव साझा किए।
26 जून 1975 को 8 बजे का हिंदी न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी बोल रही थी। वो समझ में आया था कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। उसके बाद ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है, तो आप कोई भी समाचार बिना संबद्ध अधिकारी को दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मुरारजी देसाई गिरफ्तार कर लिए गए, और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट।
रैगिंग संबंधी UGC विनियम 2009 के अनुसार इससे संबद्ध प्रत्येक संस्थान को छात्रों का अनुपालन आश्वासन और रैगिंग विरोधी आश्वासन पत्र जमा कराना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। रैगिंग संबंधी UGC विनियम 2009 का अनुपालन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 IIT संस्थानों की सूची में बॉम्बे, खड़गपुर, पलक्कड़ और हैदराबाद शामिल हैं, जबकि IIM संस्थानों में बॉम्बे, रोहतक और तिरुचिरापल्ली के नाम शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय संस्थानों में एम्स रायबरेली और दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश और हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नाम शामिल हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए त्रिभाषा नीति वापस ले ली है। राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने त्रिभाषा नीति को लागू करने वाले 2 सरकारी आदेशों को वापस लेने का फैसला किया है। श्री फडणवीस ने बताया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और नीति कार्यान्वयन के लिए एक अलग समिति का गठन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि प्राथमिक विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने से संबंधित 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए शासकीय निर्णय रद्द कर दिए गए हैं। पहले GR से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था, जबकि दूसरे GR के अनुसार यह छात्रों के लिए वैकल्पिक तीसरी भाषा होती। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3 भाषा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज मुंबई में शुरू होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA संघ के Zone 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन समय में लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करना और शासन तथा विधायी कार्य के लिए नवाचारी तरीकों को तलाशने संबंधी एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में सेवा प्रदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे और शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था।
सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम।
इस वर्ष ये यात्रा सिक्किम में नाथुला पास और उत्तराखंड में लिपुलेख पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। सिक्किम सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के बुनियादी ढांचों का विस्तार कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक समस्याओं की आरंभिक पहचान और निदान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर और न्यूरोमॉड्यूलेशन एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र में के प्रभारी डॉक्टर नंद कुमार इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता रात 9:30 बजे कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमरीका जाएंगे। वो वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर कल होने वाली क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। डॉक्टर जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म विषय पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्थान के प्रमुख ने हाल ही में अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट किए जाने के दावों पर संदेह जताया है। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा कि अभी भी ईरान के पास कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हवाई हमलों से इसे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मृगनैनी पांडे।
अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतकर पहला भारतीय बनते हुए इतिहास रच दिया है। फाइनल में आयुष ने कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18, 21-13 से हराया। शेट्टी ने मैच पर दबदबा बनाए रखा और कनाडा के खिलाड़ी को शुरू से ही बैकफुट पर रखा। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी चोउ टियेन चेन को हराकर बड़ा उलटफेर किया। शेट्टी ने 2023 कनाडा ओपन के बाद से विदेशी धरती पर BWF टूर पर देश को पहला पुरुष सिंगल्स का खिताब दिलाया है। हालांकि प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर सकी। 16
मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 3 महीने से चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंडवा में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। अभियान के दौरान प्रदेश में 2048 करोड़ रुपयों की लागत से 83,000 से ज्यादा तालाब बनाए गए, जिससे खेतों की सिंचाई होगी। इसके अलावा 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। मौसम विभाग ने आज झारखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा और 5 जुलाई तक ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद नवीन। पूरे देश में समय से 9 दिन पहले मानसून की दस्तक को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी पहली खबर बनाया है। जनसत्ता लिखता है, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में झमाझम बारिश। 1 जुलाई से रेलवे में होने वाले बदलावों को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका जैसे सभी अखबारों ने दिया है, रेलवे आरक्षण चार्ट 4 नहीं 8 घंटे पहले जारी होगा। कल से क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऑनलाइन वॉलेट जैसे जरूरी कामों के नियम बदले जाएंगे। कहीं मिलेगी सुविधा और कहीं बढ़ेगा भार, इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। देश में 16 साल बाद अगले वर्ष 1 अप्रैल से जनगणना शुरू होने को भी समाचार पत्रों ने अपनी खबर बनाया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 32 सवालों से तैयार होगी देश की कुंडली। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार जनगणना की शुरुआत घरों की गिनती के साथ होगी। पीढ़ियों को बचाना है तो पेड़ लगाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड में इस कथन को लोकसभा ने अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री के चित्र के साथ प्रकाशित किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह का हथियारबंद माओवादी उग्रवादियों के साथ बातचीत से इनकार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 IIT, 3 IIM और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए अपनी त्रिभाषा नीति वापस ली। मुख्यमंत्री ने इस नीति पर विचार विमर्श के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज से फिर शुरू। IAEA प्रमुख ने कहा, अमरीकी हवाई हमलों के बावजूद ईरान कुछ महीनों में यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम फिर से शुरू करने में सक्षम। और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने पहला US ओपन खिताब जीता, तन्वी शर्मा उपविजेता रही। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।